भेद है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से हागै नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मंदिर का पुनर्निर्माण। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से हग्गै नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज इस पुस्तक से हमारे लिए अंतिम अध्ययन होगा। मेरे मित्रों, इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार इसराइली बंधुआई से वापस अपने देश में आए और परमेश्वर के भवन को बनाना छोड़कर अपने भवनों को बनाना आरंभ कर दिए। और इस परिस्थिति में परमेश्वर ने हगई को उनके पास भेजा ताकि उनसे वह बातचीत करे। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम और आगे इस पुस्तक के बारे में और इससे भविष्यवाणी की बातों को सीखें और जानें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम अलग अलग स्थानों पर बैठ करके भी रेडियो के माध्यम से आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकते हैं। आज जब हम हगै नबी की पुस्तक से अपने अध्ययन को कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आज के अध्ययन पर आप हमें बहुतायत से आशीषित करें। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक श्रोता भाई बहन आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। आज हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों की आप सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हगै नबी की पुस्तक से हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारे लिए इस पुस्तक से अंतिम अध्ययन होगा। इसराइलियों ने स्वदेश लौटने के बाद मंदिर का पुनः निर्माण कर लिया था और चढ़ावे लाने भी आरंभ कर दिए थे, परंतु उनके मन अशुद्ध थे, अतः वे परमेश्वर की आशीषों से वंचित थे। वे शिकायत करने लगे तो परमेश्वर ने उन्हें समझाया कि उनके मन अशुद्ध होने के कारण उनके चढ़ावे भी अशुद्ध हो जाते हैं और परमेश्वर अशुद्ध चढ़ावे को स्वीकार नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप उनकी आशीषें रुकी हुई हैं। परंतु अब क्योंकि उन्होंने अपने मन शुद्ध करके परमेश्वर से संबंध सुधार लिया है, इसलिए परमेश्वर उन्हें लगातार आशीषें देता रहेगा। वर्षों पूर्व मैं एक व्यक्ति के साथ फुटबॉल खेलता था। उसने एक दिन मुझसे कहा कि मैं वर्षों से एक कलीसिया का सदस्य था और उसकी विभिन्न समितियों पर भी सदस्य था। मैं संस्कारों में भी सहभागी होता था, परंतु मैं मसीही विश्वास नहीं हो पाया। कहने का अर्थ है कि वह मसीही विश्वासी नहीं बन पाया और वह नहीं था। उसने कहा, मैं सप्ताह में ऐसा आचरण रखता था जो एक विश्वासी को शोभा नहीं देता है। एक दिन मुझे बोध हुआ कि मैं पापी हूं और मुझे मुक्ति की आवश्यकता है। यहीं से मेरा जीवन बदलने लगा। देखिए, मन परिवर्तन कितना आवश्यक है। सुनिए प्रभु यीशु क्या कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 7:6-20 में कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा अर्थात बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मेरे प्रियो, जीवन की मान्यताएं मन से उभरती हैं, अतः मन का बदलना अति आवश्यक है। आप अपने जीवन की बातों को जानते हैं, इससे बेहतर कि कोई और आपको जाने। आपके जीवन की उन छुपी हुई बुराइयों को भी आप जानते हैं, आपकी मन की दशा आप जानते हैं। जब तक आप उसे बदलना नहीं चाहेंगे वह स्वयं से नहीं बदलेगा। याद रखें, धार्मिक रीतियों द्वारा परमेश्वर से मेल करना ऐसा है जैसे खाद पर हजारों लीटर इत्र डालकर उसे सुगंधित बनाना या करना। प्रेरित पत्रस ने शमौन जादूगर से कहा था, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। जी हां, परमेश्वर को मन की खराई चाहिए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और इब्रानियों की पत्री 10 उसके 22 पद में लिखा है कि हम सच्चे मन के साथ परमेश्वर के समीप जाएं। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य का मन तो स्वभाव से ही अशुद्ध है, तो उसे शुद्ध कैसे किया जाए? जी हां, यह बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या मनुष्य अपना मन शुद्ध करने के लिए कुछ कर सकता है? जी नहीं। या किसी ड्राई क्लीनर के पास दुकान में जाकर उसे साफ करें? संभव ही नहीं है। हम सब कुछ धो सकते हैं परंतु कलंक नहीं। नीति वचन की पुस्तक 20 अध्याय उसके 9 पद में हम एक प्रश्न को देखते हैं जहां पर एक प्रश्न पूछा गया है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? परंतु परमेश्वर के पास इसका उपचार है। यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 18 और 19 पद में पत्रस लिखता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता चला आया है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। एक मसीही गीत है, मेरे पाप को धोए कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। यह एक सबसे बड़ा सिद्धांत है और वह यही है कि सिर्फ प्रभु यीशु का लहू हमारे पापों को धो सकता है, क्योंकि उसका लहू पवित्र है। परमेश्वर इसराइलियों से कहता है, तुम आशीषों से वंचित हो क्योंकि तुम्हारे हाथ और मन अशुद्ध हैं। मेरे मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आशीषित हैं? यदि नहीं तो आज आप भी इस बात को स्वीकार करें कि आप आशीषित क्यों नहीं हैं, क्योंकि आपके मन अशुद्ध हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप शुद्ध हो जाएं और उन आशीषों को प्राप्त करें जिसे परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। हगै के पुस्तक 2 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, फिर हगै ने कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मेरे दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है और इनके सब काम भी वैसे हैं, और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। उनके अशुद्ध मन के कारण उनकी आराधना भी अशुद्ध हो जाती थी। यही एक कारण है कि मनुष्य उद्धार पाए बिना परमेश्वर के ग्रहण योग्य कुछ भी काम नहीं कर सकता है। लोग कहते हैं कि अच्छे कर्मों के द्वारा आप उद्धार या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि हम अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु उद्धार पाने के द्वारा हम अच्छा कर्म कर सकते हैं। अब पद 15 से 19 में या 19 के संबंध में टीकाकारों के विचार अलग अलग हैं। कुछ टीकाकारों के विचार में ये पद स्वदेश लौटने वाले इसराइलियों की मंदिर निर्माण के प्रति उदासीनता के संबंध में है, और कुछ टीकाकारों के अनुसार यह मंदिर निर्माण के बाद उनकी निराशा से संबंधित है, क्योंकि उनके दुर्भाग्य में परिवर्तन नहीं आया है। हगै कहता है कि कार्य में बदलाव का समय नहीं आया है, और बुराई में पवित्रता से अधिक प्रभावी संक्रमण होता है, और उसका प्रभाव बहुत समय का होता है। तथापि मेरी समझ के अनुसार परमेश्वर इस्राएल को एक महान सिद्धांत समझा रहा है कि जैसे अशुद्ध के संपर्क से या छूने से पवित्र भी अशुद्ध हो जाता है, वैसे ही मंदिर के पुनर्निर्माण के उपरांत भी उनके मन परमेश्वर से दूर होने के कारण वे परमेश्वर की आशीषों से वंचित हैं। इसलिए उन्हें अपने मनों को शुद्ध करना है। हगै नबी की पुस्तक 2:15 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था। परमेश्वर कहता है कि उन्होंने अपना मन परमेश्वर की ओर फेरा है, इसलिए अब वह उन्हें आशीषें देगा। आगे कहता है हगै 2:16-19 में लिखा है, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा में जाता तब 10 ही पाता था, और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारे सारे खेतों को लू और गेरोई और ओलों से मारा तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही वाणी है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में हैं? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनसे कहा, अब क्योंकि तुम्हारे मन मेरे साथ उचित संबंध में हैं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। देखिए, उन्होंने मंदिर बना लिया था और धार्मिक संस्कार भी निभा रहे थे, परंतु वही पर्याप्त नहीं था। रीति रिवाज तो वे उस समय भी निभा रहे थे जब परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन की बंधुआई में भेजा था। सच तो यह है कि उनके मन परमेश्वर में नहीं परंतु उससे दूर थे। मेरे मित्रों, अपनी कलीसिया को सुधारने की एक विधि यह है कि आपके पास बाइबल की शिक्षा देने वाला पास्टर हो और आप अपना मन शुद्ध करके पश्चाताप करके आराधना में जाएं। इस प्रकार आपकी कलीसिया को मिलने वाली आशीष रोकी नहीं जाएगी। याद रखें कि अशुद्ध वस्तु के स्पर्श से पवित्रता भी अशुद्ध हो जाती है। आशीष पाने से पूर्व आपका मन परमेश्वर के साथ उचित संबंध में होना आवश्यक है। यह एक महान सिद्धांत है। मैं इससे अधिक व्यवहारिक बात दूसरी नहीं जानता हूं, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को भी शुद्ध होते हुए देखना चाहता है ताकि आपको आशीष दे। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे परमेश्वर की योजना का प्रकाशन। हगै नबी की पुस्तक 2:20 में लिखा है, उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हगै के पास पहुंचा। यह भी दिसंबर 24 का दिन है। और हगै उन्हें एक और संदेश दे रहा था। किसी ने पूछा कि हगै ने एक ही दिन में दो संदेश क्यों दिए, तो मैंने कहा वह बड़े दिन की छुट्टी में घर जाना चाहता था, अतः उसने दोनों संदेश एक ही दिन में देकर अपना काम पूरा किया। मेरे प्रियो, कुछ लोगों ने मेरे इस बात को गंभीरता से स्वीकार करके मुझे पत्र लिखे। एक ने लिखा कि हगै के समय में बड़े दिन का पर्व नहीं था, और दूसरे ने लिखा कि हमें बड़ा दिन नहीं मनाना चाहिए। सच तो यह है कि जब मेरे पास उचित उत्तर नहीं होता है, तब मैं काल्पनिक उत्तर दे देता हूं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसने एक ही दिन दो संदेश क्यों दिए। हगै दो अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है, यहूदा के अधिपति जरुबाबेल से यों कह, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा। जरुबाबेल उनका नागरिक प्रशासक था, वह दाऊद का वंशज था। यह उससे की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आगे लिखा है हगै दो उसके 22 पद में, और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा, मैं अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल तोड़ूंगा और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। कहता है मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। परमेश्वर जब भी कहता है कि वह आकाश और पृथ्वी को कंपित करेगा या सांसारिक राज्यों को पलट देगा, तो उसका संकेत महाक्लेश की ओर होता है। जी हाँ, उदाहरण के तौर पर पद 6 और 7 में वह रथों की चर्चा करता है, क्योंकि उस युग में वे रथों के भरोसे पर ही युद्ध करते थे, जैसे आज परमाणु शास्त्रों पर लोग निर्भर करते हैं। परमेश्वर कहता है कि वह इन सब को नष्ट कर देगा। आइए हम देखते हैं भावी आशा क्या कहता है। हगै नबी की पुस्तक 2 उसके 23 पद में लिखा हुआ है, जो इस अध्याय का या पुस्तक का अंतिम पद है। लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस दिन हे शालतियेल के पुत्र मेरे दास जरुबाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। कहता है उस दिन का अर्थ है अंत समय में, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। उस युग में मुहर वाली अंगूठियां होती थी जो हस्ताक्षर का काम करती थी, अतः वह सदैव सुरक्षित रखी जाती थी, और उसे सुरक्षित रखने की विधि थी कि उसे उंगली में पहना जाए, अतः वह एक अति मूल्यवान वस्तु मानी जाती थी। लिखा है मैंने तुझी को चुन लिया है। जैसा हम देख चुके हैं, जरुबाबेल दाऊद का वंशज था। परमेश्वर ने दाऊद ही से नहीं, जरुबाबेल से भी प्रतिज्ञा की थी कि मसीह उसके वंश से आएगा। अतः प्रभु यीशु दाऊद का पुत्र तो है ही, वह जरुबाबेल का भी पुत्र है। यद्यपि जरुबाबेल का नाम मत्तीरचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार द्वारा दी गई प्रभु यीशु की वंशावलियों में आता है, परंतु मत्ती में वह सर्वथा एक भिन्न पुरुष है। मेरे प्रियो, यह भविष्यवाणी उस समय से संबंधित है जब महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु आएगा और परमेश्वर दाऊद के वंशज जरुबाबेल के वंशज प्रभु यीशु को संपूर्ण जगत के राज सिंहासन पर बैठाएगा। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यह पुस्तक प्रभु यीशु को यथा उचित स्थान, नैतिक शासक, नागरिक शासक और पृथ्वी का भावी राजा प्रकट करती है। अतः यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, यह तो सच है कि यह मंदिर जिसे जरुबाबेल का मंदिर कहते हैं प्रभावशाली नहीं था, परंतु इसका महत्व इस बात में है कि एक दिन प्रभु यीशु इसी स्थान पर बने मंदिर में प्रवेश करेगा। किसी ने इस पुस्तक के संदेश को बड़ी ही उत्तमता के साथ काव्य रूप में व्यक्त किया है। कहता है, सुख दुख की पुकार मिश्रित सुनाई देती है, वहीं निर्वासितों की आशा के पत्थर रखे गए हैं। दुश्मन ने षड्यंत्र रचा, राजा का मार्ग स्थापित हुआ, प्रदर्शित उधम द्वारा परमेश्वर का सिंहासन बना, स्वार्थ मन में आया, निराशा छाई, हिम्मत टूटी, अपने घर बने परमेश्वर का घर उजड़ रहा। तो स्वर्ग से ओस धरती पर रुका, परमेश्वर का संदेश वाहक आया, परमेश्वर का संदेश सुनाया। अपना चलन देखो, बलवंत हो मंदिर बनाओ या भवन महिमा से भरेगा। उसने उनके विवेक को छुआ तो उनकी आत्मा जागी, कि हाथों ने काम किया कमर कसी गई। मेरे मित्रों, मैं फिर से कहता हूं कि आज कौन है जो न्याय करेगा कि किसका काम बड़ा है और किसका काम छोटा है। हो सकता है कि एक आज के प्रसिद्ध सेवा कार्य से बढ़कर आपका संडे स्कूल हो। केवल परमेश्वर ही जानता है कि किसका कितना महत्व है। हम विश्वास योग्य ठहरें और काम करें। हगै की छोटी पुस्तक का संदेश यही है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि हमारा जीवन उसके आशीषों को प्राप्त कर सके। मेरे श्रोता मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और इसी के साथ हगै नबी की पुस्तक भी समाप्त होती है। हम अगले अध्ययन में एक नए पुस्तक के साथ अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, लेकिन मुझे आशा है कि इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक बातों को सीखा है और आत्मिक लाभ उठाया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीषें मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
एक समय था पापी था जीवन, बंधन थे कितने सारे। एक समय था पापी था जीवन।